জয়ানিল প্রেম ধন করুণা
প্রচুর
জয়ানিল প্রেম ধন করুণ প্রচু ধন প্রভু কোথা গেল আচার্য ঠাকুর ধন প্রভু কোথা গেল আচার্য ঠাকুর কহ মোর স্বরূপ রূপ কহ সনাতন কহ মোর স্বরূপ রূপ কহ সনাতন কহ দাস রঘুনাথ পতিত পাবন কহ দাস রঘুনাথ পতিত পাবন কহ মোর ভট্ট যুগ কহ কবীরা এক কালে কোথা গেল গৌরনটর পশন কুটিব মাথা অনলে পশিব গৌরঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কাঁদে নরোত্তম দাস হরে কৃষ্ণ হরে Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद 29वां अध्याय नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य बातचीत 32 खेश्वे कतरेणापि देवभूतात्म हेतुषु जीवस्य न व्यवच्छेदः स्याचेत् तत्तत् प्रतिक्रिया. अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. अनुवाद: सारे जीव भाग्य अन्य जीवों अथवा मन तथा शरीर संबंधी दुखों का सामना करने का प्रयास करते हैं, इतने पर भी वे प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध रह जाते हैं. तात्पर्य: जिस प्रकार एक कुत्ता एक टुकड़ा रोटी या दंड के लिए इधर उधर भटकता है, उसी प्रकार जीव भी भौतिक दुख का सामना करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाकर सुखी रहना चाहता है. यही जीवन संघर्ष है. इसे हम अपने दैनिक जीवन में घटित होते देख सकते हैं कि किस प्रकार कष्टमय परिस्थितियों को दूर करने के लिए हमें योजनाएं बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता है. एक प्रकार की कष्टमय परिस्थिति से छुटकारा पाने के लिए हमें अन्य प्रकार की कष्टमय परिस्थितियों में पड़ना होता है. निर्धन व्यक्ति धन अभाव के कारण कष्ट पाता है, किंतु यदि वह धनी बनता है, बनना चाहता है, तो उसे अनेक प्रकार से संघर्ष करना होता है. वास्तव में यह कोई प्रतिक्रिया न होकर माया का जाल होता है. यदि वह व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के कारण अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट रहता है, तो वह अपनी शक्ति को कृष्ण भक्ति विकसित करने में लगा सकता है. इसकी संस्तुति समस्त वैदिक साहित्यों में हुई है. श्रीमद् भागवत में कहा गया है, तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद् भ्रमताम पर्यतः तल्लभ्यते दुःखवद् अन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीर रम्भसा. जो लोग वास्तव में बुद्धिमान और दार्शनिक हैं, उन्हें यही प्रयत्न करना चाहिए कि उनका अंत सार्थक हो, जो उच्चतम लोक से निम्नतम लोक तक विचरण करते रहने पर भी प्राप्य नहीं है. जहाँ तक इंद्रिय भोग का प्रश्न है, वह काल क्रम में स्वतः प्राप्त किया जा सकता है. जिस प्रकार न चाहते हुए भी हमें स्वतः कष्ट प्राप्त होते हैं, मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भक्ति विकसित करते रहने का प्रयत्न करें, अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के प्रयास में व्यर्थ समय न गवाएं. वास्तव में भौतिक स्थिति को सुधार पाना कठिन है. सुधारने का अर्थ है अन्य दुखपूर्ण स्थिति को अंगीकार करना. किंतु यदि हम अपने कृष्ण भक्ति में सुधार अन्य दुखपूर्ण स्थितियों को सुधार लाने का प्रयास करते हैं तो बिना किसी बाह्य प्रयास के ही भौतिक जीवन के क्लेश भाग जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण वचन देते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्तः प्रणश्यति। जो भक्ति पथ का अनुसरण करता है वह तन तथा मन के कष्टों के होते हुए तथा अन्य जीवों एवं भाग्य द्वारा आ मिलने वाले तथा अपने वश से बाहर के कष्टों के होते हुए भी विनष्ट नहीं होता। बार को दोहराइए। हरे कृष्णा। नारद मुनि और राजा प्राचीन बरही का संवाद चल रहा है। नारद मुनि ने जो कथा राजा प्राचीन बरही को बताई थी उसको पूरी तरह से राजा समझ नहीं पाए और राजा ने नारद मुनि से निवेदन किया कि वो कृपा करके उस कथा के पीछे जो सिद्धांत हैं उनका स्पष्टीकरण करें। और नारद मुनि अब उस कहानी के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं और उस व्याख्या में बता रहे हैं इस श्लोक में कि किस तरह है हर जीव को, हर प्राणी को इस भौतिक जगत में नाना प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं और ये कष्ट जीव के व्यक्ति के मन से उत्पन्न हो सकते हैं, शरीर से उत्पन्न हो सकते हैं या अन्य जीवों के या लोगों के माध्यम से भी प्राप्त हो सकते हैं। जो भी जीव करे वो कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति के नियम जो हैं वो बहुत कड़क होते हैं। हर एक प्राणी इस संसार में प्रकृति के कड़क नियमों से बंधा हुआ है और क्योंकि लोग ये नहीं जानते हैं कि प्रकृति के नियमों से छुटकारा कैसे पाना है वो केवल संघर्ष करते रहते हैं और जितना ज्यादा संघर्ष करते हैं उतना ज्यादा वो बंध लिए जाते हैं, बंधन संघर्ष से बढ़ जाता है। जिस प्रकार से जब एक मक्खी मकड़ी के जाल में फंस जाती है तो फंसने के तुरंत बाद बहुत संघर्ष करती है लेकिन जितना ज्यादा संघर्ष वो करे उतने सख्त वो बंधन बढ़ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे हम ये भौतिक जगत में संघर्ष करते हैं हमारे दुखों को का निवारण करने के लिए, इस संघर्ष के कारण ही हमारे दुख बढ़ जाते हैं, हमारा बंधन बढ़ जाता है क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि इस बंधन को हमें काटना कैसे है। उस मक्खी को बंधन से या मकड़ी के जाल से छुटकारा दिलाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो स्वयं बाहर से उस मकड़ी के जाल को काट सके और उस मक्खी को मुक्त कर सके। ठीक उसी प्रकार से जो बद्ध जीव यहां पर भौतिक संसार में कड़ा संघर्ष कर रहे हैं प्रकृति के नियमों के खिलाफ, उनको चाहिए कि किसी ऐसे वैष्णवों के संग में आए जहां मुक्त वैष्णव हों जो उनके भौतिक बंधन के जंजीर को काट सके। इसको साधु कहते हैं। साधु वो होते हैं जो हमारे भौतिक बंधनों को काट डालते हैं। तो जब तक हम इन भौतिक बंधनों से मुक्त नहीं होते तब तक हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अज्ञानवश लोग सोचते हैं कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर संघर्ष करके हम इन दुखों का सामना कर सकते हैं, उनके परे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में इन चीजों से केवल दुख बढ़ जाता है। अगर हमें वास्तव में मुक्ति चाहिए, सुख चाहिए, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना होगा। लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों को यह ज्ञात नहीं है, इसलिए प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में शोक करते हैं। जब वो अपने पिता हिरण्यकश्यप से बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं, नते विदुः स्वार्थ गतिम् हि विष्णुम् दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथांधेर उपगीयमाना ते पीश तंत्र्याम उरुदामि बद्धाः। वो कहते हैं, नते विदुः, जो संसार के लोग हैं उनको ये नहीं मालूम। क्या नहीं मालूम? कि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना ये हमारी अंतिम गति है, हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और उनका स्वार्थ, उनका हित वास्तव में इसी में है कि वो भगवान के शरण में जाएं और उनकी भक्ति करें। नते स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, तो अपना अपना स्वार्थ क्या है लोगों को नहीं मालूम। लोग सोच रहे हैं मेरा स्वार्थ इसमें है कि मैं पैसे कमाऊं, बड़े नाम इज्जत कमाऊं, मेरे पास गाड़ी बंगला हो, इंद्रिय भोग मुझे प्राप्त हो, ये मेरा हित है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ये गलत विचार है। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं दुराशया। दुराशया मतलब ये बुरी आशाएं हैं, ये व्यर्थ की आशाएं हैं। ऐसी आशाओं को हमारे हृदय में रखने से केवल दुख ही दुख मिलने वाला है, हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। और ये दुराशा क्या है? वही अर्थ मानिना, जो बाहर के जो चीजें हैं, इंद्रिय भोग के विषय हैं, जब उनको हम मूल्यवान समझते हैं और उनको प्राप्त करने से हमें सुख की प्राप्त होगी, ऐसी विचार हमारे मन में जब रखते हैं तो इसे दुराशया कहते हैं। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति। अंधा यथांधेर उपगीयमाना, और जो समाज के नेता होते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से वो अंधे होते हैं, उनको भी ये नहीं मालूम कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। वो भी इंद्रिय भोग के पीछे भागे जा रहे हैं। तो नेता भी अंधे हैं, प्रजा भी अंधी है, और अंधा आदमी जब दूसरे अंधे आदमी को हाथ पकड़ के ले जाता है तो कहाँ जाएंगे दोनों? दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए आजकल समाज की दशा ये है। तो प्रहलाद बताते हैं कि ये नहीं जानते हैं, ते अपि ईश तंत्र्याम उरुदामि बद्धा। ईश मतलब भगवान, ईश्वर, तंत्र्याम मतलब उनके नियम, उरुदामि, उरु मतलब हमारा पेट, दाम मतलब रस्सी, बद्धा मतलब बंधन। तो ये मूर्ख लोग, प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये नहीं जानते कि प्रकृति के कड़क नियमों से वो सख्ती से बंधे हुए हैं, लेकिन ये भी नहीं जानते कि मैं बंधा हुआ हूं। हर एक व्यक्ति सोचता है मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहे मैं वो कर सकता हूं। ये सबसे बड़ी मिथ्या है, सबसे बड़ा मोह भ्रम है लोगों में, जो सोचते हैं कि मैं मुक्त हो गया हूं, मैं स्वतंत्र हूं। वो नहीं पहचानते हैं कि वास्तव में प्रकृति के नियमों ने उस व्यक्ति को ऐसे बांध के रखा है कि वो समझ में नहीं पाता कि मैं बंधा हुआ हूं। ये है माया जाल। माया जाल मतलब एक ऐसा जाल है जो कि माया ने हमारे ऊपर फैलाया हुआ है और हम उसको पहचान भी नहीं सकते कि हम जाल में अटके हुए हैं। जैसा है कोई चोर आके हमारा जेब काटे, हमें पता भी नहीं चले कि हमारा पैसा गया है। चोर आके हमारे घर में डाका डाले, हमें पता भी नहीं चलता है, हमें पता भी नहीं चले कि चोर आके डाका डाल के चला गया है। तो भगवान की माया शक्ति बहुत शक्तिशाली है। तो इसलिए केवल भगवान के शरण ग्रहण करने से हम इस व्यर्थ के संघर्ष से मुक्त हो सकते हैं और इस संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था में हम रह सकते हैं। यहां यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्व अप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति अपने वचन से, अपने शरीर से, अपने कर्मों से, अपने मन से, तन से, धन से, जो भगवान श्री हरि श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है, हर पल भगवान की सेवा करता है, तो ऐसा व्यक्ति जीते जी भी मुक्त अवस्था में रहता है, हालांकि उसका भौतिक शरीर है, ठंडी गर्मी का प्रभाव उसके शरीर पर पड़ता है, वो भी बीमार पड़ सकता है, उसके जीवन में भी कष्ट कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन फिर भी वो मुक्त पुरुष कहलाता है, क्योंकि वो सदैव भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। तो अगर हमें भी ये प्रकृति के कड़क नियमों के जाल से मुक्त होना है तो हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते रहना है, बस बहुत सरल उपाय है। और हमारे पूर्व आचार्यों ने हमें अपने जीवन से बतलाया है कि हमें कैसे करना चाहिए। महाजनों ये न गतः सपन्ता, इसलिए ऐसे महाजनों के पद चिन्हों में हमें चलने का प्रयास करना चाहिए, उनसे प्रेरणा हमें प्राप्त करनी चाहिए। आज ऐसे ही एक महाजन का तिरुभाव तिथि है। तिरुभाव मतलब जिस दिवस पर वो अप्रकट हुए। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब भौतिक जगत में प्रकट होते हैं या अवतार लेते हैं और जब यहां से वापस चले जाते हैं अपने धाम, उनका प्राकट्य या अप्राकट्य इसको जन्म और मृत्यु नहीं कहते हैं। जन्म और मृत्यु केवल इस भौतिक शरीर से संबंधित है जो नश्वर है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का शरीर वो दिव्य है, सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक है, इसलिए उस शरीर का कभी जन्म नहीं हो सकता, नहीं उसका मरण हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण जब संसार में अवतार लेते हैं तो अपनी स्वेच्छा से आते हैं और स्वेच्छा से लौटकर चले जाते हैं। जब अपनी लीलाएं पूर्ण कर देते हैं, उनका कार्य संपन्न हो जाता है, तो लौटकर चले जाते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति तत्त्वतः अच्छी तरह से जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म इस संसार में दिव्य हैं, अलौकिक हैं, वो बहुत जल्दी इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर मेरे धाम को प्राप्त हो सकता है। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव, तो उनका प्राकट्य दिव्य होता है, और उनके प्राकट्य को आविर्भाव कहते हैं और उनके अप्राकट्य को तिरुभाव कहते हैं, ठीक उसी तरह से जब उनके नित्य पार्षद, नित्य सिद्ध शुद्ध भक्त उनके धाम से यहाँ जगत में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब उनको यहाँ भेजते हैं उनके धर्म का प्रचार करने के लिए, तो उनका जन्म और उनका मरण ये भी साधारण जन्म और मरण नहीं होता। इसलिए भगवान को और उनके शुद्ध भक्तों के लिए ये जन्म और मृत्यु ये दो शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं, हम कहते हैं आविर्भाव और तिरुभाव। तो आज एक ऐसे वैष्णव आचार्य की तिरुभाव तिथि है और ये वैष्णव आचार्य हैं श्री राजीव गोस्वामी। जब चैतन्य महाप्रभु 500 वर्ष पूर्व अपनी लीला प्रकट कर रहे थे तो उन्होंने अपने दो प्रमुख शिष्य श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजा और कहा कि वृंदावन में जाकर रहो, वहाँ भजन करो और वहाँ पर नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना करो और भक्ति का प्रचार करो। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो वहाँ चले, लेकिन साथ साथ उनके पश्चात और कई वैष्णव वृंदावन चले गए और उनमें से प्रमुख वृंदावन के ये 6 गोस्वामी हैं जिनको षड गोस्वामी कहते हैं। षड गोस्वामियों में से 2 प्रमुख रहे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, उनमें से तीसरे थे जीव गोस्वामी, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये 6 वैष्णव आचार्य जिनको षड गोस्वामी कहते हैं। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हम सब ये षड गोस्वामियों के अनुगामी हैं, अनुयायी हैं। हम खास करके श्री रूप गोस्वामी के पद चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जब वृंदावन चले गए, उसके थोड़े समय पहले उनके एक छोटे भाई थे, उनका निधन हो गया,
उस छोटे भाई का नाम था अनुपम। ये प्रभु रामचंद्र जी के बड़े शुद्ध भक्त थे। जब चैतन्य महाप्रभु का संग उन्हें प्राप्त हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम अनुपम से बदलकर वल्लभ कर दिया। जब वल्लभ का निधन हो गया उस समय जीव गोस्वामी जो उनके लड़के थे उनका नाम उस समय जीव था केवल, उस समय वो गोस्वामी नहीं थे। हालांकि अंदर से गोस्वामी हैं क्योंकि वो नित्य पार्षद हैं भगवान के, लेकिन उस समय जीव वो केवल छोटे बालक।